आरजे श्वेता आप सभी का तहे दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मैं दोस्तों आपसे बताऊं कि आप सभी सुन रहे हैं ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की। तो दोस्तों, जब ये शहर की धड़कन ही है तो मैं बताऊं कि आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आप पधारे हैं। तो चलिए उनका मोस्ट वेलकम कर लेते हैं, और वेलकम करते ही हम आप सबको बता दें कि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। स्पेशल कैसे हैं? क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिता श्रीवास्तव मैम, जो कि नारी ज्ञानस्त्री पीजी कॉलेज की हिंदी डिपार्टमेंट की HOD है। तो हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन के हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान मीन्स हिंदी। हम सबके दिलों में जो हिंदी है वो आज मैम के थ्रू आज हम सुनेंगे और जन जन तक आवाज़ पहुंचाएंगे हम हिंदी के बारे में। तो मोस्ट वेलकम है। आइए सबसे पहले हम वेलकम कर लेते हैं आज के अपने गेस्ट डॉक्टर अमिता श्रीवास्तव मैम का। सो मोस्ट वेलकम डॉक्टर अमिता श्रीवास्तव मैम।
धन्यवाद श्वेता जी।
कैसी हैं मैम आप?
ठीक है श्वेता।
ओके, तो हम बता दें आप सभी लिसनर्स को कि मैम का हम दो बार प्रोग्राम अपने नारी ज्ञानस्त्री PG कॉलेज की जो HOD डॉक्टर अमिता श्रीवास्तव मैम हैं, नाम मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कई लोग अभी अभी हमें ज्वाइन किए हैं और कुछ लोग जस्ट अभी आए हैं। तो परिचय बताना हमारा है कि मीन्स बात आप सुन रहे होते हैं लेकिन शायद आप पता नहीं कर पाते हैं कि बात किससे हो रही है। तो मानना यही है कि मैं बार बार रिमाइंड रहूँ कि आज हमारे बीच कौन है साथ और किससे हम बात करा रहे हैं आपकी। तो डॉक्टर अमिता श्रीवास्तव मैम, नारी ज्ञानस्त्री PG कॉलेज की HOD ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट। तो मोस्ट वेलकम है मैम। हम सभी ज्ञानस्त्री टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज आप हमारे स्टूडियो आए हैं और काफ़ी गहरी जानकारियां हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए लेके आई हैं मैम। तो मैम, हम ये कह रहे थे कि दो सेशन आपका हो चुका है, ठीक है, और लिसनर्स ने इतने बढ़ चढ़ के उसको सपोर्ट किया है, इतना साथ दिया है और इतने प्यार से सुना है, और फीडबैक मैम, अमिता मैम मैं बताऊं आपको कि फीडबैक बहुत ही ज़्यादा मिले हैं आपकी पोएम्स, आपने जो कविता कही है हिंदी में और खुद की एक घसियानन की आपने कविता कही थी पिछले सेशन में, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है। तो आज हम आपसे चाह रहे हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई हैं तो आज स्पेशल हमारे लिसनर्स के लिए क्या लेके आई हैं?
धन्यवाद पहले तो श्वेता जी कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। हाँ श्वेता, मुझे लगता है कि आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस बारे में थोड़ी जानकारी हम लोगों को देना चाहते हैं। तो आज हम भारतेंदु का बारे में परिचय।
ओके मैम, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम तो मैंने भी सुना है और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सुना है, लेकिन आज हम पुराने दिनों में अपने जा रहे हैं वापस और बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो मैम, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं एज अ स्टूडेंट्स के तरफ से कुछ क्वेश्चंस आए थे हमें पहले ही, क्योंकि मैंने अनाउंस करके रखा था कि अमिता मैम आएंगी, उनसे हम किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, तो सबसे पहले हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। मैम, संक्षेप में उनका कुछ परिचय बता दीजिए और यह भी साथ बता दीजिए कि भारतेंदु उनको क्यों कहा गया है, उनका नाम क्यों भारतेंदु पड़ा है।
जी श्वेता, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। भारतेंदु को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, ब्रजभाषा का ज्ञान था। इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र। इन्होंने 35 साल के समय में 175 ग्रंथ लिखे और भारतेंदु तीन दुखियों, देश सेवा, साहित्य सेवा पर खूब धन खर्च करते थे। इन्होंने पुस्तकालय और नाट्यशाला की स्थापना की। भारतेंदु जी जो देशभक्ति भावना के कारण काशी के विद्वानों ने इनको 1880 में एक सार्वजनिक बैठक में इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी, जिसका मतलब यह है ये भारत का चंद्रमा थे जो लोगों को प्रकाश देते थे। और इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु।
वाह मैम, बहुत ही गहरी जानकारी आपने दी है कि कितने आसान शब्दों में आपने बयां कर दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या थे। तो मैम आपने काफ़ी जानकारियाँ दी, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा स्किप लग रहा है, तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि भारतेंदु जी कवि थे कि लेखक थे मैम, क्या थे उनका परिचय बता दीजिए, और ये भी साथ में कि उन्होंने कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की थी।
जी श्वेता, क्यों नहीं, बहुत अच्छा। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक गद्यकार भी थे, पत्रकार भी थे, नाटककार थे, व्यंगकार थे, और इतना ही नहीं वे पत्रकार भी थे। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, और बाल बोधनी पत्रिका का 1874 में संपाद किया था। इन्होंने 18 वर्ष की आयु में यह पत्रिका निकाली जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।
जी मैम, सही में वाकई में बहुत ही ज़्यादा गर्व है हमें उनकी कविताओं पे और उनके जितने भी काव्य थे उन पे है। तो मैम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा प्रश्न और है कि हमने सुना है, ये मेरा है, आरजे श्वेता का ये है कि हमने सुना था कि भारत की दुर्दशा नामक एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक की, तो इस नाटक में केंद्रीय भाव क्या है इस नाटक का।
जी बहुत अच्छा, ये इनका नाटक था श्वेता जी। हम बताना चाहेंगे कि इसका केंद्रीय भाव ये था कि इसमें भारतेंदु ने समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस समय देश के राज में, अंग्रेजों के राज में भारत की यह दुर्दशा हो चुकी है जो मुझसे देखी नहीं जाती। इस विषय पर हम सभी भारतवासियों को चिंता और चिंतन करना चाहिए। इसमें प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण है, और इसमें भारत की दुर्दशा पर रोने फिर इस दुर्दशा का अंत करने की बात कही गई है। और यह नाटक 1880 में लिखा गया, इसका केंद्रीय भाव था देश प्रेम।
वाओ, देश प्रेम, वाकई में मैम प्रेम तो हर किसी के होता है हृदय में, लेकिन देश को लेके प्रेम दिखाना बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे भारतेंदु जी के रग रग में था। उनकी जितनी भी काव्य कलाएं और नाटक नुक्कड़ जो भी था उनका बहुत ही बेहतरीन था, और देश प्रेम उनको साफ साफ उनकी रगों में झलकता था। तो मैम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि तब की शिक्षा नीति और अब क्या है, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। हम सभी को पता है, सारे लिसनर्स को पता है कि नई शिक्षा नीति अब लागू हो चुकी है। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि इस नई शिक्षा नीति में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कोई कविता या कोई उल्लेख दिया गया है सिलेबस में, जो आप बता सकती हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए।
हाँ श्वेता, अब की जो नई शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम आया है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का सिलेबस में है, और मैं उनके मातृभाषा प्रेम पर दोहा भी सुनाऊंगी आपको, और उसमें एक कविता है, रो कहूं जो तो अमंगल होए, उसके भी बारे में आपको बताती हूँ।
जी प्लीज बताएं।
इनके दोहे हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इसमें अपनी भाषा की उन्नति करना चाहिए, क्योंकि यही सब उन्नति का मूल है, मतलब जड़ है, और बिना अपनी भाषा के ज्ञान के हृदय की पीड़ा नहीं मिटती। इनका और भी एक सुनाऊंगी मैं, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय कर रहूं भाषा मोही प्रचार। कहने का तात्पर्य है कि आप विभिन्न देशों से शिक्षा एवं ज्ञान को प्राप्त करके उसे अपनी हिंदी भाषा में प्रचारित प्रसारित करें, यही उनका उद्देश्य था।
बहुत ही अच्छा विजन था हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मैम।
और तो और श्वेता जी, जो नई शिक्षा नीति में और ये भी जो आया है रोकहूँ जो तो मंगल हुए
जी,
ये बहुत अच्छा है, मैं इसको सुनाना चाहूँगी
जी मैम।
रोकहूँ जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जे कहे पिए जाई, जो कहे जाहू ना तो प्रभुता, जो कछु ना तो स्नेह नसाई, जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन जी है ना तो यह क्यों पति आई, तासो पयान समय तुमरे हम का कहे आप हमें समझाई। यह कविता में नायिका परदेश जो पति जा रहा है उससे उस पति को उद्बोधित करते हुए कहती है कि यदि मैं अब आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा, प्रायः ऐसा माना भी जाता है। वह कहती है यदि मैं आपको परदेश जाऊं तो कह दूं तो आप समझेंगे कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती, यदि मैं इस समय कहती हूं कि प्रियतम परदेश मत जाओ तो यह आप समझेंगे कि मैं अनावश्यक अधिकार दर्शा रही हूं, कुछ भी ना कहूं तो मेरे अधिकार का अंत होता है, और यदि मैं कहूं कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती तो आपको यह विश्वास कैसे होगा, अतः हे प्रियतम अब आप ही समझाइए कि आपके इस समय परदेश जाते समय मैं आपसे क्या कहूं।
क्या बात है, भारतेंदु जी की ये बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी कविता है, लेकिन आपके स्वरों में अभी हमने सुना आपके मुख से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मैम, और लग रहा था कि वापस हम उन्हीं दिनों में चले आए हैं, बहुत अच्छा फील करा है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। और बात हो गई शिक्षा नीति की और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, तो बात हम ये करना चाहेंगे कि क्या भारतेंदु जी ने किसी स्त्री पर भी कोई पोयम उन्होंने लिखा है जो आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को।
जी श्वेता, इन्होंने स्त्री पर लिखा है, मुझे याद आ रहा है और मुझे थोड़ा सा याद है, इन्होंने जो लिखा है स्त्री पर वह है पर्दे में कैद औरत की गुफार, इसका शीर्षक है
जी।
उसकी मैं कुछ पंक्तियां जो मुझे आती हैं मैं सुनाऊंगी। लिखाए नाही देत्यो पढ़ाए नाही देत्यो, सैया फिर रंगीन बनाए नाही देत्यो, लहंगा दुपट्टा नीको न लागे, लहंगा दुपट्टा नीको न लागे, मेमन सा गाउन मंगाए नाही देत्यो, लिखाए नाही देत्यो पढ़ाए नाही देत्यो, वै गोरिन हम रंग संवलिया, वै गोरिन हम रंग संवलिया, नतिया पे बंगला छवाए नाही देत्यो, लिखाए नाही देत्यो पढ़ाए नाही देत्यो, सरसों का उपटन सरसों का उपटन हम ना लगैबे, सरसों का उपटन हम ना लगैबे, साबुन से दहिया मलाए नाही देत्यो, लिखाए नाही देत्यो पढ़ाए नाही देत्यो, कब लगी बैठी। श्वेता जी इस पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा।
जी मैम, मैं आपकी सारी पंक्तियों पे विशेष ध्यान दे रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, बताएं।
कब लगी बैठी काढ़े घूंघटवा, कब लगी बैठी काढ़े घूंघटवा, मेला तमाशा जाए नाही देत्यो, लिखाए नाही देत्यो पढ़ाए नाही देत्यो, सैया फिर रंगीन बनाए नाही देत्यो। भारतेंदु जी द्वारा यह लिखित गीत उनकी प्रगतिशील दृष्टि का अनुपम उदाहरण है, यह लोक शैली में लिखा गया गीत है जो आज भी अपनी लोकप्रियता सिद्ध कर रहा है, आज भी प्रासंगिक।
क्या बात है मैम, आनंद ही आनंद आपने बिखेर दिया है भाई, हमारी लोक संस्कृति को अभी अभी आपने उज्जवल किया है और बहुत ही हृदय से धन्यवाद है मैम, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा फील कराया मैम वाकई में, ये पोएम तो मज़ा ही आ गई। तो बात कर रहे हैं कविता की ही हम, तो स्त्री की बात हो गई, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं इनको हंसना बहुत पसंद है, तो आइए इन्हीं के साइड से एक क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के क्या कोई ऐसा निबंध है या कोई कविता है जिसमें हास्य व्यंग प्रधान हो मैम, तो अगर आप उसको व्यक्त करें तो आनंद आ जाएगा मैम।
हाँ बिल्कुल, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है श्वेता जी, जो हास्य है, वो हास्य द्वारा सामाजिक स्थिति की विषमता को बड़ी खूबी से दिखाते हैं भारतेंदु जी। उसमें हम सुनाते हैं, जैसे अंग्रेज स्रोत इनका है, ये हास्य व्यंग है जी। तो अंग्रेज स्रोत पर करारा व्यंग किया गया है, अंग्रेज स्रोत में अंग्रेजों पर करारा व्यंग किया है। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय उनके रंग में रंग जाए, तो भारतेंदु ने उनकी स्वार्थ सिद्धि भावना को हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। जैसे उन्होंने कहा, हे सौम्य, हम वही करेंगे जो तुमको अभिमत है, हे सौम्य, हम वही करेंगे जो तुमको अभिमत है, हम बूट पतलून पहनेंगे, हम बूट पतलून पहनेंगे, नाक पे चश्मा देंगे, कांटा और चिमटे से, कांटा और चिमटे से टेबल पर खाएंगे, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम हम पर प्रसन्न हो, हम तुमको प्रणाम करते। इस तरह व्यंग में जितना कटाक्ष नहीं था ना श्वेता जी, उतना साधारण ढंग से कहने में नहीं। इसी तरह इन्होंने कंकड़ स्रोत में भी लिखा है, उन्होंने काशी की म्यूनिसिपैलिटी के प्रबंध पर छींटा कसी की है, या उनका 1875 से 1885 के बीच लिखा गया व्यंग है जो आज भी प्रासंगिक है। तब भारत की सड़कें धूल मिट्टी कंकड़ युक्त होती थी, डामर की पक्की सड़कें नहीं, और अब डामर की पक्की सड़कों के बीच में से झांकते निकलते गड्ढे कंकड़ गिट्टी सब दिख रहे हैं। इसी पर वे कहते हैं, कंकड़ देव को प्रणाम है, कंकड़ देव को प्रणाम है, देव नहीं महादेव, देव नहीं महादेव, क्योंकि काशी के कंकड़ शिव शंकर समान, क्योंकि काशी के कंकड़ शिव शंकर समान है। इस तरह काशी की म्युनिसिपैलिटी की कार्य प्रणाली पर छींटा कसी।
क्या बात है मैम, आपने काफी गहराइयों में जाके आपने उनके हाथ से काव्य की बात करी है मैम। तो इसी श्रृंखला में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये हम आपसे जानना चाहते हैं मैम कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की इतनी रचनाएं हैं, जैसा कि आपने काफ़ी कुछ बता दिया है, काफ़ी रचनाओं का आपने प्रसंग हमें अभी सुनाया भी है, तो क्या किसी काव्य में या कविता में उन्होंने भारतीय जनमानस को अपने में समेटे हुए कोई कविता की रचना की है? अगर की हो तो हमारे लिसनर्स से साझा करें।
हाँ उन्होंने की है श्वेता जी। मुझे याद आ रहा है, वो एक गंगा वर्णन की कविता थी, तो वो पूरी कविता तो मुझे नहीं रटी है, एक दो लाइन की पंक्तियां हैं, पर भावार्थ उसका मुझे पूरा आता है, मैं बताती हूँ। गंगा वर्णन। नौ उज्ज्वल जलधार हार ही रख सी सोहती, बिच बिच छहरती बूंद मध्य मुक्त मणि पोहती। इसी ये पूरा पंक्तियां हैं, इसका मैं आपको भावार्थ जनमानस के मन में बसी भावपूर्ण भावना का वर्णन इस गंगा वर्णन में किया गया है। गंगा की आंतरिक व बाहरी सुंदरता का चित्रण कवि करते हुए बता रहे हैं कि गंगा में जो लहरें उठ रही हैं, वो चमकती हुई लहरें ऐसा लगता है मानो उसमें हीरे का हार पहन रखा है। और बीच बीच में जो पानी की बूंदें छिटकती हैं, ऊपर उछलती हैं, उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वे भी सतरंगी आभा घेरती हैं। ऐसे में कवि को लगता है कि ये बूंदें उस हीरे के हार में पिरोई गई मणियां हैं। और इतना ही नहीं, जब हवा चलती है तो गंगा की लहरें कभी बनती हैं तो कभी मिटती हैं। तो कवि ने बड़ी सुंदर ढंग से तालमेल बैठाकर मानव के मन के साथ इसको जोड़कर बताया है कि जिस प्रकार मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं जन्म लेती हैं और समाप्त हो जाती हैं, फिर पैदा होती हैं, फिर मिट जाती हैं, उसी प्रकार से गंगा में भी लहरें बन रही हैं, मिट रही हैं। इतना ही नहीं श्वेता जी, वे कहते हैं कि भारतीय लोगों के लिए गंगा महज एक जल की धारा नहीं है, वह स्वर्ग की सीढ़ी है। उसमें स्नान करके भारतीय लोग यह महसूस करते हैं कि वह पावन हो गए, पवित्र हो गए। जाने अनजाने उनसे जो दुष्कर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, गंगा उन्हें उनसे मुक्त कर देती है। गंगा दर्शन से, स्नान करने से, गंगा जल को पीने से कवि के अनुसार मानव शरीर के दैहिक यानी शरीर से जुड़े, दैविक यानी भाग्य से जुड़े, भौतिक यानी संसार से जुड़े तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। और वे कहते हैं कि यह गंगा भगवान शंकर के मस्तिष्क पर विराजमान है, महाराज सगर के वंशज, प्रभु श्री राम के पूर्वज महाराज भगीरथ इस गंगा नदी को अपने 60,000 पूर्वजों महाराज सगर के जो पुत्र हैं उनको मुक्ति के लिए पृथ्वी पर लेकर आए थे। विष्णु जी के पांव के नाखून से निकलने वाली यह गंगा संपूर्ण भारत को सींचती हुई भारतीयों के हृदय में राज करती है। यह नदी अनेक स्थानों से होकर बहती है, लेकिन काशी में गंगा नदी की जो शोभा है वह अद्भुत है। कवि बताते हैं कि काशी में गंगा नदी के घाट पर छतरियां बनी हुई हैं, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी दाना चुनते हैं, अनेक साधु सन्यासी तपस्या करते हैं। इस गंगा के जल में स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर स्त्रियां स्नान करती हैं। तो गंगा नदी अपने अद्भुत सौंदर्य के साथ, अपने अद्भुत मान सम्मान के साथ, अपनी गरिमा के साथ संपूर्ण भारत को ही नहीं सींचती बल्कि भारतीयों के मन को भी मजबूत करती है, उनके भावों को भी सींचती है, उनके मनोबलों को मजबूत बनाकर उनमें नई संजीवनी शक्ति भरती है। ये गंगा नदी हमारी ऐसी है।
वाह मैम, क्या बात है, आपने गंगा नदी के बारे में इतना विस्तृत आपने वर्णन सुनाया है हम सभी लिसनर्स को कि हम तो धन्य ही हो गए हैं। मैम, तो अब हम का वक्त बहुत नहीं है हमारे पास ज़्यादा, लेकिन अब चाह रहे हैं कि आप आई हैं तो मैम, जैसा कि आपने पिछले सेशन में खुद से आपने एक अपनी पोयम बताई थी, तो वो बहुत ही बच्चों को या फिर हमारे लिसनर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और जैसा कि आप नारी ज्ञान श्री पीजी कॉलेज की HOD हैं हिंदी डिपार्टमेंट की, तो हमें कॉलेज के बच्चों ने कहा था कि हमारी हिंदी वाली मैम की जो पोयम थी वो मैम फिर से हमें सुना दीजिए, कई बार रिपीट करने को उन्होंने कहा था। तो रिपीट तो हम कई चांस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो है स्लॉट बुक होता है। तो मैम, आज आप आई हैं हमारे ज्ञानश्री रेडियो में, तो चाहेंगे कि आपकी कोई लिखी हुई कविता हो वो हमारे सभी लिसनर्स तक पहुंच जाए।
जी श्वेता, ये तो बहुत अच्छा कह दिया आपने।
जी मैम,
मेरी इच्छा भी थी कि एक और मैंने लिखी है तो सुना दूं।
जी मैम,
यह मेरी स्वयं की लिखी रचना है श्वेता, जिसका शीर्षक है वक्त और कर। वक्त ने कहा चलो, वक्त ने कहा चलो, कर्म ने कहा ठहरो। वक्त ने कहा सोचो नहीं, वक्त ने कहा सोचो नहीं, कर्म ने कहा रोको नहीं, कर्म ने कहा रोको नहीं। वक्त ने कहा फिर हमें कुछ नहीं कहना, वक्त ने कहा फिर हमें कुछ नहीं कहना, कर्म ने कहा रुके रहो वरना, कर्म ने कहा रुके रहो वरना, वक्त ने कहा हम नहीं रुक सकते, वक्त ने कहा हम नहीं रुक सकते, कर्म ने कहा हम तुमको नहीं समझते, कर्म ने कहा हम तुमको नहीं समझते, वक्त ने कहा फिर तुम पछताओगे, वक्त ने कहा फिर तुम पछताओगे, कर्म ने कहा कहाँ तुम जाओगे, कर्म ने कहा कहाँ तुम जाओगे, वक्त ने कहा हम बलवान हैं, कर्म ने कहा हम पहलवान हैं, वक्त ने कहा हम हमेशा चलते हैं, वक्त ने कहा हम हमेशा चलते हैं, कर्म ने कहा हम वक्त के साथ बदलते हैं, कर्म ने कहा हम वक्त के साथ बदलते हैं। इस कविता के माध्यम से श्वेता मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कर्म ने अपने को वक्त के साथ ढाल लिया। पहले तो दोनों में बड़ी लड़ाई हुई, संघर्ष चला, फिर कर्म ने अपने को वक्त के साथ ढाल लिया और अब यही वक्त सही लगने लगा। इस कविता के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि वक्त बदलता भी है, कभी अचानक दुख तो कभी अचानक सुख, तो हमें वक्त जैसा भी भगवान दिखाए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और वक्त के हिसाब से बदलना चाहिए, तभी जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। और आज के समय में आधुनिकता में तो हमें वक्त के साथ बदलना ही होगा, हमें वक्त के साथ बदलना ही होगा।
बहुत ही प्यारी कविता आपके द्वारा लिखी गई है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप हमारे कहने पे आपने हमारे सभी लिसनर्स तक अपनी ये लिखी हुई कविता प्रस्तुत करी है। तो हृदय से धन्यवाद है मैम आपका। और आपने वक्त की बात करी है, तो वक्त ही हमें, थोड़ा सा वक्त हमारा बिजी चल रहा है, वरना मैम और लंबे समय तक हम आपको सुन सकते। और बहुत कुछ अभी प्रश्न हैं जो हमारे हृदय में अभी समाहित है, लेकिन हम आपसे जब नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे और ढेर सारी जानकारियाँ ले सकें, क्योंकि आप सागर हैं, सागर से अभी बूंद भर जानकारी आपने हमें दी है और अभी हमको बाल्टी भर नॉलेज चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया है मैम, आज आ पाई, बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारे जितने लिसनर्स ज्ञानश्री रेडियो समय सुन रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा आज फायदा हुआ होगा। तो प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप लोग प्लीज़ फीडबैक देते रहिए, चैट रूम में आके मैसेज करिए कि हिंदी का जो आज मैम ने बहुत ही आसानी से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बता दिया है, तो आपको कहाँ तक सफलता मिली, कहाँ और कितनी गूढ़ जानकारी आज आपको प्राप्त हुई है। तो मैम का आप चलिए शुक्रिया अदा करते हैं हम सभी मिलके, और कोशिश करेंगे मैम हमें नेक्स्ट टाइम फिर से ज्वाइन करें और खूब ढेर सारी जानकारियाँ लेके आएँ। तो आज के लिए तो वक्त इतना ही था मैम, और फिर हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे और ढेर सारी जानकारियों के साथ।
बिल्कुल।
तो दोस्तों तब तक के लिए सुनते रहिए ज्ञानश्री रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।